नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। क्विन स्लोबोडियन और बेन टर्नऑफ की पुस्तक मस्किज्म अ गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड एलन मस्क की जीवनी नहीं बल्कि समकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण है। लेखक मस्क को केवल असाधारण उद्यमी, विवादास्पद सार्वजनिक व्यक्ति या तकनीकी दूरदर्शी मानकर देखने से इनकार करते हैं। उनके अनुसार मस्क उन संस्थागत शक्तियों, व्यावसायिक तरीकों और राजनीतिक कल्पनाओं के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें वे मस्किज्म कहते हैं। पुस्तक का केंद्रीय उद्देश्य यह समझाना है कि तकनीक के माध्यम से स्वायत्तता और भविष्य का वादा कैसे राज्य की सहायता, निजी अवसंरचना और केंद्रित कॉरपोरेट नियंत्रण के साथ जुड़ता है। फोर्डिज्म की तुलना के जरिए यह तर्क रखा गया है कि जिस तरह फोर्डिज्म ने 20वीं सदी की औद्योगिक व्यवस्था को परिभाषित किया, मस्किज्म 21वीं सदी के लिए वैसी ही कार्यपद्धति बन सकता है। यह पुस्तक टेक्नोलॉजी, पूंजीवाद, लोकतंत्र और सत्ता के संबंधों को मस्क की कंपनियों तथा सार्वजनिक प्रभाव के माध्यम से पढ़ती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मस्क को व्यक्ति नहीं, एक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में देखना। पुस्तक की सबसे विशिष्ट बात यह है कि वह एलन मस्क के व्यक्तित्व की पहेली सुलझाने का प्रयास नहीं करती। लेखक मानते हैं कि मस्क के वक्तव्यों और व्यवहार में हमेशा एक स्थिर, सुव्यवस्थित विचारधारा खोजना कठिन है। इसलिए मस्किज्म किसी ऐसे सिद्धांत का नाम नहीं है जिसे मस्क ने स्वयं घोषित किया हो। यह उनके उद्यमों, राज्य के साथ संबंधों, तकनीकी दावों और सार्वजनिक भाषा में दिखने वाले आवर्ती पैटर्न का विश्लेषणात्मक नाम है। यह दृष्टि पाठक को नायक और खलनायक के सरल ढांचे से बाहर निकालती है। प्रश्न यह नहीं रह जाता कि मस्क व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाशाली है या खतरनाक। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि किन आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में एक व्यक्ति परिवहन, संचार, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सार्वजनिक बहस जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रभाव अर्जित कर सकता है। फोर्डिज्म के साथ तुलना इसी कारण उपयोगी है। हेनरी फोर्ड ने भी अपने दौर को किसी विचारधारा का नाम नहीं दिया था, फिर भी उत्पादन, श्रम और उपभोग की एक व्यवस्था उनके नाम से समझी गई। पुस्तक का दावा है कि मस्किज्म भी स्वामित्व, तकनीकी निर्भरता और संप्रभुता की बदलती व्यवस्था को समझने का उपकरण है। इसकी सीमा भी स्पष्ट है क्योंकि यह एक व्याख्यात्मक ढांचा है, मस्क का औपचारिक घोषणा पत्र नहीं। फिर भी यह ढांचा व्यक्तिगत सनसनी से हटकर संरचनात्मक शक्ति पर ध्यान केंद्रित कराता है। दूसरा, तकनीकी स्वतंत्रता के वादे के पीछे निर्भरता और निजी नियंत्रण का विरोधाभास। मस्किज्म का प्रमुख विरोधाभास यह है कि यह आत्मनिर्भरता, चयन और तकनीकी मुक्ति की भाषा बोलता है, लेकिन व्यवहार में उपयोगकर्ताओं, सरकारों और बाजारों को निजी प्रणालियों पर अधिक निर्भर बना सकता है। पुस्तक इस विरोधाभास को केवल नैतिक आलोचना के रूप में नहीं रखती, वह दिखाती है कि जब संचार, परिवहन, उपग्रह संपर्क या डिजिटल मंच जैसी बुनियादी क्षमताएं कुछ कंपनियों के नियंत्रण में आती हैं, तब व्यक्तिगत सुविधा सामूहिक निर्भरता का रूप ले सकती है। किसी तकनीकी उत्पाद का उपयोग करना सतह पर स्वायत्त निर्णय लगता है, पर उसके साथ सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क, रखरखाव और प्लेटफॉर्म नियमों की शर्तें भी जुड़ती हैं। इस तरह स्वतंत्रता का अर्थ केवल विकल्पों की संख्या नहीं, बल्कि उस अवसंरचना पर नियंत्रण भी है जिस पर विकल्प टिके हैं। लेखक के अनुसार मस्क की परियोजनाएं इसी तनाव को तीखे रूप में सामने लाती हैं। वे उपयोगकर्ता को शक्ति देने का वादा करती हैं, किंतु निर्णय, मानक और पहुंच का अंतिम अधिकार एक अत्यधिक केंद्रित कॉरपोरेट ढांचे में रह सकता है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि निर्भरता केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहती, सार्वजनिक संस्थाएं भी निजी तकनीकी क्षमता पर भरोसा करने लगती हैं। पाठक के लिए इसका उपयोगी निष्कर्ष यह है कि किसी नवाचार को केवल उसके आकर्षक उत्पाद या दावे से नहीं, बल्कि उसके स्वामित्व, संचालन और जवाबदेही की संरचना से भी परखना चाहिए। तीसरा, राज्य विरोधी भाषा और सरकारी संसाधनों पर आधारित विस्तार का संबंध। पुस्तक मस्किज्म को पूर्णतः मुक्त बाजार की विचारधारा नहीं मानती। इसके बजाय वह उस मॉडल पर ध्यान देती है जिसमें निजी तकनीकी शक्ति राज्य की नीतियों, सब्सिडी, अनुबंधों और सार्वजनिक अवसंरचना से लाभ पाती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को अक्षम या बाधक बताने वाली भाषा भी अपनाई जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, अंतरिक्ष और रक्षा संबंधी तकनीकी क्षमताएं तथा संचार अवसंरचना जैसे क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार और निजी कंपनियों का संबंध अनिवार्य रूप से गहरा होता है। लेखक का बिंदु यह नहीं कि सरकारी सहयोग अपने आप में अनुचित है। बड़े तकनीकी और औद्योगिक परिवर्तन अक्सर सार्वजनिक निवेश के बिना संभव नहीं होते। आलोचना उस स्थिति की है जिसमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा समाज या राज्य वहन करे, जबकि नियंत्रण और प्रतिष्ठा कुछ निजी हाथों में केंद्रित हो जाए। इस व्यवस्था में उद्यमी को अकेला नवप्रवर्तक बताया जा सकता है, जबकि उसकी सफलता सार्वजनिक संस्थानों, नियमों और वित्तीय समर्थन पर भी टिकी होती है। मस्किज्म इस विरोधाभास को संप्रभुता के प्रश्न से जोड़ता है। यदि सरकारें नागरिक हित से जुड़े क्षेत्रों के लिए निजी मालिकों पर निर्भर हों, तो लोकतांत्रिक निगरानी कमजोर पड़ सकती है। इस अध्ययन का महत्व यह है कि यह पाठक को सरकारी भागीदारी बनाम बाजार की सतही बहस से आगे ले जाता है। असली प्रश्न है कि सार्वजनिक धन, जोखिम, निर्णय अधिकार और लाभ का वितरण किसके पक्ष में हो रहा है। चौथा, संकट, विलुप्ति और भविष्य की भाषा से तकनीकी सत्ता को वैध बनाना। लेखकों के अनुसार मस्किज्म की प्रेरक भाषा संकट और आपातकाल की भाषा है। जलवायु, सभ्यतागत पतन, जनसंख्या, युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मानव विलुप्ति जैसे विशाल खतरों को बार बार सामने रखकर असाधारण तकनीकी परियोजनाओं और केंद्रित निर्णय लेने की जरूरत को उचित ठहराया जा सकता है। पुस्तक इस बात से इनकार नहीं करती कि इन क्षेत्रों में वास्तविक जोखिम मौजूद हैं। उसका प्रश्न यह है कि जोखिम की व्याख्या कौन करता है, समाधान किसके स्वामित्व में रहते हैं और कौन तय करता है कि किस भविष्य को बचाना प्राथमिक है। जब भविष्य को केवल अस्तित्व बचाने की दौड़ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब धीमी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, श्रम अधिकार, समानता या देखभाल जैसे प्रश्न गौण बताए जा सकते हैं। संकट की तात्कालिकता आलोचना को भी प्रगति विरोधी या विनाशकारी ठहरा सकती है। पुस्तक इसी कारण भविष्यवाद के भीतर छिपे राजनीतिक चयन को रेखांकित करती है। हर तकनीकी समाधान किसी न किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को प्राथमिकता देता है। मस्किज्म में तकनीकविद को समस्या पहचानने वाला, समाधान देने वाला और नियम तय करने वाला तीनों रूपों में स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस विश्लेषण से पाठक के लिए एक व्यावहारिक कसौटी निकलती है। किसी भव्य भविष्यवादी दावे को सुनते समय यह पूछना चाहिए कि उसके लाभार्थी कौन है, उसका शासन किसके हाथ में होगा और क्या संकट का हवाला जवाबदेही से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अंत में मानव श्रम, डिजिटल मंचों और चयनात्मक मानवता की राजनीतिक कल्पना, मस्किज्म का एक अधिक असहज पक्ष पुस्तक की उस चिंता में दिखता है कि तकनीकी भविष्य को अक्सर कम मानवीय उत्पादन और अधिक मशीन एकीकरण के रूप में कल्पित किया जाता है। स्वचालन, डिजिटल मंच, वीडियो गेम और सोशल मीडिया केवल मनोरंजन या दक्षता के साधन नहीं रहते, वे व्यवहार, ध्यान, डेटा और श्रम के नए संबंध भी बनाते हैं। स्रोतों में वर्णित पुस्तक का तर्क है कि ऐसी व्यवस्था में मनुष्य उत्पादन की प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है और डिजिटल प्रणालियों में अधिक गहराई से जोड़ा भी जा सकता है। यह विरोधाभास महत्वपूर्ण है। श्रम से मुक्ति का वादा तब अधूरा है जब लोगों की आजीविका, भागीदारी और निर्णय क्षमता के लिए कोई समानतापूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाती। लेखक मस्किज्म की मानवता संबंधी भाषा में भी तनाव देखते हैं। वह व्यापक मानव भविष्य की बात कर सकती है, किंतु सहानुभूति के प्रति संदेह, आप्रवासन विरोध, प्रजननवाद और चयनात्मक उद्धार जैसी प्रवृत्तियों के साथ जुड़ सकती है। इसलिए पुस्तक तकनीक को तटस्थ शक्ति मानने से सावधान करती है। यह पूछना जरूरी है कि किसके श्रम को अनावश्यक कहा जा रहा है, किसके डेटा से प्रणालियां बन रही हैं और किसे सुरक्षित भविष्य का पात्र समझा जा रहा है। यह विषय मस्किज्म को केवल व्यापार या गैजेट की चर्चा नहीं रहने देता, वह सामाजिक सदस्यता, गरिमा और बराबरी के प्रश्न तक पहुंचता है। निष्कर्ष में, मस्किज्म अ गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो एलन मस्क से जुड़ी खबरों को अलग अलग विवादों, उत्पाद घोषणाओं या सोशल मीडिया टिप्पणियों के रूप में देखने के बजाय एक बड़े ढांचे में समझना चाहते हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था, तकनीक नीति, डिजिटल प्लेटफॉर्म, लोकतंत्र और समकालीन पूंजीवाद में रुचि रखने वाले पाठकों को इसमें एक सुसंगत आलोचनात्मक दृष्टि मिलेगी। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो तकनीकी नवाचार के समर्थक हैं, क्योंकि पुस्तक का आग्रह तकनीक को खारिज करना नहीं बल्कि उसके स्वामित्व, वित्त पोषण और जवाबदेही पर कठिन प्रश्न पूछना है। पुस्तक का बौद्धिक लाभ यह है कि वह स्वतंत्रता और निर्भरता, निजी उद्यम और सार्वजनिक सहयोग तथा भविष्यवाद और सामाजिक बहिष्कार जैसे विरोधाभासों को एक साथ देखने की भाषा देती है। समान विषय की अनेक पुस्तकों में मस्क को या तो जीवनी के नायक, व्यवसायिक रणनीतिकार या सांस्कृतिक विवाद के केंद्र के रूप में रखा जाता है। स्लोबोडियन और टार्नोफ की अलग पहचान यह है कि वे मस्क को व्यवस्था का लक्षण और सक्रिय निर्माता दोनों रूपों में पढ़ते हैं। फोर्डिज्म की तुलना इस विश्लेषण को ऐतिहासिक गहराई देती है, जबकि राज्य, युद्ध, संचार और श्रम के प्रश्न इसे केवल तकनीक आलोचना तक सीमित नहीं रहने देते। पाठक को इस पुस्तक को एक तर्कपूर्ण व्याख्या के रूप में पढ़ना चाहिए, न कि मस्क के निजी विश्वासों का अंतिम प्रमाण मानकर। इसी सावधानी के साथ यह वर्तमान शक्ति संरचनाओं को समझने का प्रभावशाली साधन बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्विन स्लोबोडियन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।